بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم كتاب فوز الجزاني بترجمة الطاهر الرباني حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھے ہیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، نورانی تاثیر رکھی ہے، ایمانی تاثیر رکھی ہے، ایقانی تاثیر رکھی ہے، احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے اصل مقصود ہے. یہ بات بار بار عرض کی جاتی ہے کہ جب بھی ایسے مجالس میں شرکت کا موقع اللہ عطا فرمائیں، یہ اصلاحی مجالس کہلاتی ہیں. یہاں آئیں یا کہیں اور جائیں تو ٹٹول ٹٹول کر دل میں کوئی اور غرض ہو تو اس کو نکال لیں. ہماری ایک ہی غرض ہونی چاہیے کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ کی محبت سے معمور ہوں گے، اللہ کی ہر اطاعت کو شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے، اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام تو یہ ہے اور تصوف میں یہی صفائی مقصود ہے. نفس کا تزکیہ یہی ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنے دل میں جھانکے تو صاف محسوس کرے گا ہر وقت ایک کشمکش چلتی ہے، جی منفی جذبات ابھرتے ہیں، ہمیں مغلوب کر لیتے ہیں. اچھے جذبات بھی ابھرتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی عمل کی. تو دل کے اندر ایسی صلاحیت حاصل کرنی ہے، ایسی قوت حاصل کرنی ہے، ایسی ہمت حاصل کرنی ہے کہ اللہ کی ہر اطاعت ہمیں مرغوب ہو جائے، جی چاہنے لگے، اس کے بغیر رہ نہ سکے، اللہ کی ہر نافرمانی سے شدید نفرت ہو جائے، اس کو چھوڑنے والے بن جائیں. یہی محنت فرمائی اللہ والوں نے. یہ ارشادات بھی ان کے لیے جو حضرت کے اس زمانے میں آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے، اس لیے ان کے اندر تاثیر ہے، لیکن یہ انہی دلوں میں اترتی ہے جو دل سے اس کے طالب ہوں گے. ہم طلب کو لے کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تاثیر ہمارے دلوں میں بھی آئے گی. حضرت کے ارشادات عربی میں ہیں، جس کا ترجمہ ہمارے قریب زمانے میں مولانا عاشق لائی میرٹھی رحمۃ اللہ نے فرمایا. اس میں سے پڑھا جائے گا، چند سطریں پھر پڑھ دیتے ہیں. پچھلے اتوار جو پڑھی تھی، یہ تو بار بار پڑھنے کی چیزیں ہیں، ہر دفعہ پڑھنے سے ایک نئی تاثیر ملے گی. فرماتے ہیں اللہ والوں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ والے جو ہے کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. تو یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ والے جو ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ نے ان کو نوازا ان کی محنتوں کی برکت سے، ان کے دلوں کے اندر اللہ نے ان کو صلاحیت عطا فرما دی، اللہ پاک کی رضا کے قریب ہو گئے، خوشنودی کے قریب ہو گئے، اطاعت کو کرنے والے بن گئے، نافرمانیوں سے بچنے والے بن گئے، جس بنا پر کہ ان کے دل کی اصل جو صلاحیت وہ بیدار ہوئی، اور پھر عجیب عجیب قسم کے احوال اور کیفیات ان کے دلوں پر وارد ہوئیں، جس کا اظہار انہوں نے کیا. اس سے پہلے ہم نے اس کو پڑھا، اس کے تعلق سے جو ہے وہ چیزیں ہمارے عقول سے بالا ہیں. تو یہاں اس کے بعد، اس کے باوجود اس کے کہ ان کو یہ کیفیت مل گئی، پھر بھی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے قلوب کے مصف ہو جانے سے ڈرتے رہتے اور خائف رہتے ہیں کہیں ان کے قلوب مصف نہ کر دیے جائیں اور ان کے چاند سورج گہن میں نہ آ جائیں. और उनके पांव फिसल ना जाएं, ये है। और हमारा हाल क्या है, हम मुतमईन हैं, हम में हर बंदा मुतमईन है, अमल ना करके भी मुतमईन है। हर बंदा कहता है बस मैं तो पाक साफ हूँ, यानी अब मुझ में किसी किस्म की हैं कमी नहीं आ सकती, ये दावा है हमारा, हालांकि ऐसा है नहीं। ये अल्लाह वाले तो बता रहे हैं कि डरते रहते हैं कि उनके कुलूब जो अब बन गए हैं, बन चुके हैं, मुशाहदा कर रहे हैं, सलाहियत देख रहे हैं, अल्लाह दिखा रहे हैं, फिर भी डरते हैं और खैफ रहते हैं कि उनके कुलूब मशक न कर दिए जाएँ, उनके चांद सूरज गहन ना हो जाएँ, इनके पाँव फिसल ना जाएँ। हर वक्त उसके दरवाजे कुर्ब के हल्के से लटके रहते और उसकी रहमत का दामन थामे रहते और वास्ते देख इल्तजा किया करते हैं कि हमारे परवरदगार, ना हम तुझसे दुनिया चाहते हैं ना आखिर, बल्कि दीन के मतलब आफ़ और आफियत चाहते हैं, हमें माफ़ फरमा दें और आफियत चाहते हैं। यानी ये इनका हाल बताते हैं कि ये है, है? और ईमान और मार्फत की बका चाहते हैं। हम पर इस मज़मून की खैरात फरमा, हमने तेरी रहमत का दामन थामा है, हमारे गुमान को हमारे मतलब नामुराद मत फरमा, हमारे लिए कुन के इशारे से इसको मौजूद फरमा दे। क्यों कि जब तू किसी काम को करना चाहता है तो कुन फरमा देता है, फौरन हो जाता है। यानी इस मुकाम पर पहुंचकर ये सलाहियत दाखिल करके भी हर वक्त अल्लाह के आगे फरियाद करते रहते हैं और डरते रहते हैं। अलहन साहबो, अखवाल और अफाल सब में अल्लाह वालों का इत्तेबा करो। अल्लाह करे बात हमारे भी समझ में आ जाए। असल में तो इन अल्लाह वालों को मानना ये है कि उनके अखवाल अफवाल अफाल में इत्तेबा करो, जैसे उन्होंने सलाहियत हासिल की और उनकी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली आई और उनको अल्लाह का क़ुर्ब मिला और उनको ये सलाहियत मिली और फिर डर भी रहे हैं, तो हम भी अल्लाह से ये मांगे कि अल्लाह हमें उनका इत्तेबा नसीब फरमा दे, किस में, अखवाल में भी और अफ़ाल में भी। उनके खादिम बन, अपनी जान और माल से उनका क़ुर्ब हासिल करो कि जो कुछ भी तुम उनको देगे वो उनके पास तुम्हारे लिए जमा रहेगा कि कल क़यामत दिन उसको तुम्हारे हवाले कर देंगे। ऐ मुखातब, तू फराखी माश का आरज़ूमंद है, हम सब चाहते हैं, क्यों जी, आजकल तो मादियत का ज़माना है ना, मादियत ने दिलो दिमाग में कब्ज़ा किया हुआ है, जहाँ किसी बुजुर्ग का पता चलता है तो जाते क्या मांगते हैं उसे। आजकल हालात ठीक नहीं हैं, तराखी हो जाए, तंगी दूर हो जाए, यही है ना, मना नहीं है। मैं फिर अर्ज कर दूँ कि जायज़ ख्वाहिशात को जायज़ तरीक़ों से पूरा करना, इसके ज़रूरियात हासिल करना, ये मना नहीं है। नाजायज़ ख्वाहिशात के पीछे पड़ना या जायज़ ख्वाहिशात को नाजायज़ तरीक़ों से पूरा करना, इससे मना किया गया, यहाँ उसकी बात नहीं है। तो यहाँ फरमा रहे हैं ऐ मुखातिब, देखो आज से 1000 साल पहले की बात है, जो मजमा आपके पास बैठा है उसको फरमा रहे हैं, ऐ मुखातिब तो फराखिए माश का आरज़ूमंद है कि हमारा रिज़्क बढ़ जाए, हालांकि कलम उसकी तंगी के मतलब चल चुका है। ये बात हमारी समझ में नहीं आएगी, हमारा नस्बी इतराज़ जड़ेगा, यानी तकदीर के अंदर लिखा जा चुका है किसको कितना मिलेगा, ये बात पक्की है। देखिए ईमानियात तो आपको याद होंगी ना, एक ज़माना था कि माएँ बच्चों ने सबसे पहले ईमानियात सिखाती थी, है या नहीं, अब ख़त्म हो गया, अल्लाह करे फिर ये चीज़ बेदार हो जाए। बुनियाद इसी से बनती थी, वल क़दर खैर रही और शर रही मैंने अल्लाह अच्छा रट तो लिया हमने भी। इसके मानों पर गौर करो कि जो तकदीर का फैसला है वो हो कर रहेगा, जिसको अल्लाह ने अमीर रखना है वो अमीर बन के रहेगा, जिसको अल्लाह ने गरीब करना है वो गरीब होकर ही रहेगा, ये तकदीर। तो ये असल में बात जो फरमा रहे हैं, ये चूंकि इनके दिल बन चुके और ये अल्लाह के फैसलों को जैसे मुशाहदा कर रहे हैं, ये तकदीर के कलम को जैसे देख रहे हैं, जैसे लोहे महफूज पर लिखा हुआ इनके सामने है, इस बिना पर ये फरमा रहे हैं कि तू फराके माश का आर्जूमंद है, हालांकि कलम इसकी तगी के मतलब चल चुका है। लिहाजा तो इस आदमी की वजह से मबहूज बन गया कि ऐसी शय का तालब है मेरे मकसूद में नहीं है। तो क्या कुछ दुनिया तलब करता है, हरीस बनता है, हालांकि मकसूम से रैत जो कुछ भी नहीं मिलेगा, जो किस्मत में लिख दिया उससे रैत नहीं मिलेगा। अल्लाह वाले तो ताते करते इस पर भी उनके दिल खौफदार रहते हैं, और तुम मासियतें करते हो फिर भी तुम्हारे दिल में खौफ है। कितना फर्क बता रहे हैं, अल्लाह वाले अल्लाह की अताअत के अंदर दिन रात लगे रहते हैं फिर भी उससे डरते रहते हैं, और तुम अल्लाह की मासियतें कर रहे हो, नाफरमानियां कर रहे हो, धराधर उनके हैं गुनाह, और फिर भी तुम क्या है मुतमईन हो, बेखौफ है दिल तुम्हारे। यही तो सही धोखा है, बचो बचो, ये तंबीह फरमा रहे हैं, बचो बचो, कहीं बेखबरी की हालत में तुम्हारी गिरफ्त ना फरमा लें। अल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमाए। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर फन के मतलब उन्हीं से मदद चाह करो जो इसके माहिर हों। जिस फन को सीखना है ये आम ज़ाबता है, दुनिया के अतबार से हम फौरन जो है उसी शोबे का जो माहिर है उसके पास जाते हैं। दीन के भी माहिर हैं, ये दिल की इस्लाह के माहिरीन हैं। तो समझते हर फन के मतलब उन्हीं से मदद चाहते हैं जिसके माहिर हैं। ये इबादत भी एक फन है, इसके अच्छे माहिर वो लोग हैं जिनके आमाल में इखलास है, जो शरीयत के आलिम हैं और उस पर अमल करने वाले। दीन के तल्लक से भी क्या है, इबादत भी फन है।